नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयला खंडों की नीलामी के वास्ते कोल सेतु नीति को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक तैनात किए। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारत का प्रस्ताव स्वीकृत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सीमा संघर्षों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम को नए सिरे से अपनाने पर सहमति जताई। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मिस्र से, और 3 दिन के GOAT इंडिया टूर पर कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला खंडों की नीलामी नीति कोल सेतु को स्वीकृति दी। इससे विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला खंडों की नीलामी के लिए एक नया माध्यम तैयार हो गया है। इसका उद्देश्य संसाधन की निष्पक्ष उपलब्धता और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
2016 में कोल सेतु के माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज, एनी यूजर कैन पार्टिसिपेट इन द कोल सेतु विंडो। अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में।
नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये नीति 2016 की गैर विनियमित क्षेत्र खंडों की नीलामी नीति में कोल सेतु माध्यम जोड़कर दीर्घकालिक आधार पर कोयला खंडों के आवंटन की अनुमति देगी। मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के संचालन के लिए 11,718 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी।
सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2026 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी है।
कोपरा के लिए MSP का अप्रूवल हुआ है। मिलिंग कोपरा का 12,027 पर क्विंटल रखा गया है एंड फॉर बॉल कोपरा द प्राइस विच इज अप्रूव्ड इज 12,500 रुपीज पर क्विंटल।
श्री वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से नारियल उत्पादकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोल सेतु नीति को स्वीकृति देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोल सेतु नीति कोयले का सुचारू, कुशल और पारदर्शी उपयोग और सक्षम बनाने के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार करने में आसानी होगी, घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी और आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल के वर्ष 2026 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय नारियल किसानों की आय बढ़ाने के साथ खोपरा उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय की दक्षिण मामलों की सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि श्री मोदी अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की ये पहली यात्रा है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है।
इंडिया एंड जॉर्डन शेयर वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस।
भारत और जॉर्डन के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत जनसंपर्क स्थापित है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी है, जिसमें भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2,80,00,000 है।
डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को ओमान जाएंगे। पूरा देश आज संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा कर्मियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य आज संसद भवन परिसर में बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होगा। श्री शाह कल रात रायपुर पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक समय नक्सली हिंसा से प्रभावित बस्तर क्षेत्र अब नक्सल मुक्त होने की दहलीज पर है। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में हो रहे बस्तर ओलंपिक में इस साल 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। ये प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की गईं। इनमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अंतिम चरण के तहत हो रही संभाग स्त्री प्रतियोगिताओं में करीब 3,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित खिलाड़ी भी शामिल हैं। नक्सल मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे बस्तर क्षेत्र में हो रहा यह ओलंपिक इस इलाके की बदलती तस्वीर की एक मिसाल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में भाजपा के नए मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल आगमन पर प्रदेश भाजपा आज शिमला में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस मौके पर नड्डा एक रैली को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का शिमला में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों और राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बिहार में एनडीए और भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जगत प्रकाश नड्डा पहली बार हिमाचल पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनका भव्य अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि नड्डा के प्रदेश दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना विषय को अपनाया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इससे विश्व स्तर पर जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता मिली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बात पर बल दिया है कि जंगल की आग वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। आयोग ने कहा है कि पर्यवेक्षकों ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। संशोधन प्रक्रिया का सुचारू संचालन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का उनका दायित्व होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा की है कि थाईलैंड और कंबोडिया ने एक बार फिर युद्धविराम समझौते पर सहमति जताई है। उन्होंने समझौते के लिए अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की सहायता को श्रेय दिया। इस बीच थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक सप्ताह से चल रहे घातक संघर्षों में कम से कम 20 लोग मारे गए और लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उनकी थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरनविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानिट के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और दोनों नेता आज शाम से गोलीबारी बंद करने पर सहमत हुए। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी GOAT इंडिया टूर के लिए आज कोलकाता पहुंचे। अर्जेंटीना के सुपरस्टार की भारत यात्रा 14 साल बाद हो रही है। कोलकाता में मेसी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें एक मुलाकात सत्र और मेसी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण शामिल है। इसके बाद मेसी आज शाम कोलकाता से हैदराबाद पहुंचेंगे। वहीं हैदराबाद अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज की मेजबानी के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट।
अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी आज शाम हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। उनका एक प्रदर्शनी मैच खेलने का भी कार्यक्रम है। प्रदर्शनी मैच में एक टीम की कप्तानी मेसी करेंगे और दूसरी की कप्तानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करेंगे। इस प्रतियोगिता का नाम GOAT कप रखा गया है। मेसी दो अन्य फुटबॉल सितारों लुई सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ परेड में शामिल होंगे। तेलंगाना पुलिस ने स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मिस्र से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग का सामना जापान से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया। भारत लगातार दूसरी बार स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल तक भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज घना कोहरा छाये रहने की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
धन्यवाद फरहत। मंत्रिमंडल के निर्णय आज सभी अखबारों में प्रमुखता से हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पहली बार ऐप से जनगणना, 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर। डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे 5 महाशक्तियों का मंच, C5, भारत का भी होगा दबदबा, दैनिक जागरण की खबर है। सरकार ने हटाए जाने वाले 71 पुराने कानूनों को किया खत्म, संसद में भी आएगा नया विधेयक, देशबंधु की सुर्खी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति का उपयोग उच्च पद पाने में नहीं किया जा सकता, जनसत्ता ने प्रमुखता से दिया है। इंडिगो की मनमानी पर अंकुश के लिए उठाए गए 3 सख्त कदम, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुरू की एयरलाइन की जांच, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में, पहाड़ी राज्यों में पारा 0 से नीचे, नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से मौसम और बदलने के आसार, अमर उजाला की खबर है।
धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयला खंडों के नीलामी के वास्ते कोल सेतु नीति को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक तैनात किए। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारत का प्रस्ताव स्वीकृत। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मिस्र से और 3 दिन के GOAT इंडिया टूर पर कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का भव्य स्वागत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।